हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर श्रीमंत भाई जी विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ओडिशा की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1986 से आप बाबा के बच्चे हैं और राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। लौकिक रीति से आपने मेडिकल स्टडीज की है, आपने संबल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री प्राप्त की, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से DA किया और फिर डायबिटिक्स में आपने मास्टर और डिप्लोमा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया और 1985 से 1991 तक आपने एक असिस्टेंट सर्जन के रूप में गवर्नमेंट जॉब की और उसके बाद 91 में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और तब से हॉस्पिटल में भी सेवा दे रहे, बाबा के घर में भी सेवा दे रहे हैं, बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से रहते हैं और वर्तमान में आप ग्लोबल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हेड प्रोजेक्ट, होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज, उसके आप प्रोजेक्ट को डायरेक्टर हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी विशेष रुचि होती है पूरे भारत भर में, न सिर्फ भारत भर में लेकिन विदेशों में भी भ्रमण करके आप होलिस्टिक अवेयरनेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस के प्रति, डायबिटीज के प्रति ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही साथ आपके प्रोग्राम्स PMTV में भी रेगुलरली आते हैं जिससे लोग लाभ ले रहे हैं। बाबा के अनन्य बच्चे बहुत सुंदर बाबा की मुरलियों का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं और हमेशा वो अपने अनुभव में कहते हैं कि जगदीश भाई से हमने बहुत सीखा कि लास्ट आते हुए भी फास्ट कैसे जा सकते हैं। तो आज हम उनके अनुभव से सीखेंगे कि वे कैसे पुरुषार्थ करके लास्ट से फास्ट जाने का अपना लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर टॉपिक सुनाने के लिए बताए, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, हमारा ये कॉमन सत्संग नहीं है, हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सभी, लौकिक पढ़ाई और ये फिर अलौकिक पढ़ाई, दोनों में कुछ कंट्रास्ट भी है, कुछ सिमिलरिटीज भी है। दोनों में विशेष रूप में क्या अंतर है लौकिक पढ़ाई और इस पढ़ाई में, विशेष मेन बात बताइए। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, मुख्य बात क्या है? मुख्य दो बातें मैं आपको बताऊंगा। लौकिक पढ़ाई की जो प्राप्ति है, प्रारब्ध है एक जन्म आधा जन्म के लिए, लेकिन इस पढ़ाई 21 जन्म के लिए इसका प्रारब्ध है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लौकिक पढ़ाई में आप फेल हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके दोबारा पास कर सकते हो, लेकिन इस पढ़ाई में फेल तो कल्प सेम। इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोनों मुख्य डिफरेंस है, ये मेन दो, बाकी तो वहां मनुष्य को पढ़ाते हैं या आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, बहुत सारे आप डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन ये दो मुख्य अंतर है कि इस पढ़ाई में हम 21 जन्म प्रारब्ध मिलता है हमें और इस पढ़ाई में सेकेंड चांस और नहीं है, जो किया सो किया। तो कितने सिंसियरली ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हमने तो लौकिक पढ़ाई को कैसे पढ़ते हैं आप सभी को अनुभव होगा कि नहीं पता नहीं, आप अलग अलग प्रोफेशन के होंगे, मैं मेडिकल प्रोफेशन की बात सुनाऊंगा। हमको इतना पढ़ता था, मैं बॉम्बे में पढ़े क्या हूं, देखा हूं कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं। अगर इतना मेहनत हमारी पढ़ाई में कोई करे, मैं कहूंगा विश्व महाराजन पद सुनिश्चित है, उसका फिक्स है। हम इतना नहीं पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा लूज हो जाते हैं। लेकिन दोनों में, लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी है। हमने देखा है लौकिक पढ़ाई में साल भर बच्चे इधर उधर खेल कूद मस्ती करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम से एक दो महीना पहले ऐसा पूरा पढ़ेंगे कि एकदम टपर होके भी दिखाते हैं। तो इस पढ़ाई में भी बाबा कहते अभी तक जो हो जैसे हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी आप लास्ट से फर्स्ट होके दिखा सकते हो, लास्ट आते हुए भी फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट होके दिखा सकते हो। मैं जब इस संस्था में आना हुआ 86 में, मैं फर्स्ट टाइम मधुबन जब आया, यहां हमारे विश्वरतन दादा थे, जगदीश भाई जी से विश्वरतन, सभी दादाओं को मिला हूं, दादियों को भी मिला हूं, तो विश्वरतन दादा को पूछा, जगदीश भाई को भी पूछा, दोनों का लगभग समान उत्तर था। उस समय तो पक्का दृढ़ निश्चय था कि 2000 में विनाश हो ही जाएगा, मुझे 200% निश्चय था कि विनाश हो जाएगा, और इतना कम समय में क्या किया जाए। तो मैं दोनों को पूछा कि मैं इतना लेट आया हूं, इस सारी बातों को समझना है प्रैक्टिकल जीवन में धारण, हमारी पढ़ाई सारा प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी बैठ के तो कहीं लिखना नहीं है, ये कैसे होगा, कब होगा। तो विश्वरत्न दादा ने कहा कि किसी स्कूल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो और एग्जाम एकदम नजदीक है, तो क्या आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप पढ़ाई में पूरा फोकस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आप भले लेट आए हो, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान देंगे पढ़ाई में, तो इस पढ़ाई में भी आप टपर बन सकते हो। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे लास्ट सो इतना फास्ट पुरुषार्थ करो कि फर्स्ट होके दिखाओ। तो हम कभी नहीं सोचें कि हम लेट आए, नहीं, अभी भी मार्जिन है, अभी भी मार्जिन है। मुझे याद है जगदीश भाई जी को मैं पूछा, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं बोला भाई जी मेरा जीवन का 26-27 साल बर्बाद कर दिया मैं। उन्होंने कहा नहीं देखो, मैं जब जॉब जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब था, तब बाबा के ज्ञान में आया। तो उन्होंने कहा देखो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में मेडिकल पढ़ते समय बाबा मिलते, तब मेडिकल पढ़े पढ़ते कि पढ़े पढ़ते, उस समय आप हॉस्टल में खा रहे थे, यहां तो खान पान की शुद्धि चाहिए, तो आप खाना अपना बना के खाते क्या, कैसे कर पाते, फिर डिपेंडेंट हैं, माँ बाप क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें आती है। तो भगवान को क्या पता नहीं किस आत्मा को किस समय जगाना है। तो बाबा जानी जाननहार है, तो इसलिए पास्ट को और नहीं देखो, जो हो गया हो गया, अभी से मुझे क्या करना है सोचो और प्लानर बनाओ, पुरुषार्थ करो, आप बहुतों से आगे जा सकते हो। बाबा क्यों कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट हो सकते हो, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा। बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हम हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थी हैं, कोई साधारण पुरुषार्थी हैं, कोई अलवेले पुरुषार्थी हैं। मान लीजिए कोई ज्ञान में चलता तो है, लेकिन उनके खान पान की शुद्धि अभी तक भी नहीं है, कभी कभी कहां कभी खा लेते हैं। ट्रेन में ट्रैवल करते समय भी बाबा के बच्चे जैन फूड करके खा लेते हैं, भी कई ऐसे भी हैं। कई अभी तक भी 10 साल हो गया ज्ञान में चलता है, फिर भी अभी तक भी स्मोकिंग नहीं छोड़ा है। कभी कभी सोशलाइजेशन करना पड़ता है, पार्टी में जाना पड़ता है, कह के नियम पूरा पक्का धारणा नहीं है। लेकिन आज कोई आता है और 100% एकदम पूरा दृढ़ निश्चय से धक से छोड़ देता है सब, तो भले वो 10-15 साल 20 साल पुराना भाई है, उससे आगे नहीं चला गया, सोचिए। तो यहां जो करेगा सो पाएगा, लास्ट आके भी हम बाबा जो कहते हैं ऐसा हम करके दिखाते हैं, तो हम बहुतों से आगे निकल सकते हैं। बहुतों से आगे निकल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कि ये लास्ट समय चल रहा है, तो ही तो फास्ट पुरुषार्थ करेंगे। अगर मन में है कि हाँ विनाश तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, जैसे एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो जाता है तो स्टूडेंट को एकदम ये हो जाता है अरे बाप रे पढ़ना है अभी। लेकिन एग्जामिनेशन अगर कोई कहे कि यार 6 महीने के बाद होगा, पढ़ेगा कोई? ऐसे ही बाबा हमको जो वरदान दिए हैं, लास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, जिसके मन में ये ठान लिया कि ये लास्ट समय है, अंतिम समय है, थोड़ा समय रह गया, अभी नहीं करूंगा तो कल्पांतर नहीं होगा, मेरा 21 जन्म का प्रारब्ध बर्बाद हो जाएगा। जिसके मन में ये संपूर्ण निश्चय होगा वही लास्ट सो फर्स्ट प्रसाद करेगा। क्या आपको लगता है कि बहुत कम समय में परिवर्तन हो जाएगा सब कुछ? लास्ट समय है। बाबा ने बहुत सारे, अगर अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे, बाबा ने अंतिम समय की निशानियां बाबा ने मुरली में कहा। बाबा ने कहा है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी समझ लेना अंतिम समय आ गया। तो हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है कि नहीं हुई? अब बाबा आ रहे हैं 31 दिसंबर 2017 लास्ट मुरली थी। बाबा ने, हमारे निर्भर भाई जी जब पूछे कि बाबा को, बाबा अगले साल का वर्ष का क्या टाइटल रखें, तो बाबा ने स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष मनाओ, याद है सभी को। तो बाबा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बाबा पढ़ा चुके हैं, हमारे लिए ही सब कुछ रुका हुआ है। एग्जामिनेशन से पहले टीचर पढ़ाने के बाद थोड़ा समय मार्जिन देता है, तैयारी करो, प्रिपेयर करो। तो ये जो समय हमारे पास जो मिल रहा है थोड़ा बहुत आगे के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, अचानक का पाठ पक्का करना पड़ेगा आपको। हमारी दादियां कहती थी कि बाबा तो कहते थे अगली दिवाली नहीं देखोगे, क्योंकि फास्ट पुरुषार्थ कराना था बाबा को। तो दुनिया का परिवर्तन जब हो ना हो अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन का कोई भरोसा है? कल हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा कोई कह सकता है? एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा कोई कह सकता है? और पिछले 2 साल में तो क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। हमारे भारत के 800 नामी ग्रामी डॉक्टर कोरोना से शरीर छोड़ना पड़ा उनको, 800 डॉक्टर, 800। एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 40 साल मेहनत करना पड़ता है, तो ही जाके वो डॉक्टर बनता है। देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है आप सोच सकते हो। और हमारे बाबा के बच्चे कितने यंग, मैं तो कितने को जानता हूं। तो हमारे लिए अंतिम घड़ी कब होगा क्या भरोसा? इसलिए क्यों ना, बाबा ने कहा जो योगी बच्चे हैं कभी भी शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर शरीर छूट गया तो परमधाम का गेट तो खुला नहीं, फिर यहां ही आना पड़ेगा दोबारा जन्म लेकर। और छोटा बच्चा होके पैदा होंगे, जब तक फिर से बाबा को पहचाने, फिर से कुछ करें, 10 साल तो गया। तो इसलिए कभी भी शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं करना है, अभी तीव्र प्रसार करके कैसे बाबा जो चाहते हैं हमको करके दिखाना। बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया है, सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसको जान गए हैं लोग, लेकिन इनका बाबा कौन है किसी को नहीं जान पता नहीं। एक बार मुझे हंसी की बात सुनाता हूं। एक बार हॉस्पिटल से मैं आ रहा था, रास्ते में वो कामा होटल है, वहां कई लोग खड़े थे। बाबा के बच्चे बस भर भर के आते हैं, आबू दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं पैदल आ रहा था तो सुन रहा था, वहां कुछ लोग खड़े होके कहते ये लोग बाबा बाबा करते रहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी लोग बाबा बाबा करते, कोई बाबा बाबा तो है नहीं इनका, बाबा मैंने वो सोचते हैं कि दाढ़ी दूड़ वाला कोई होगा। तो यहां तो बाबा बाबा तो कोई दिखता नहीं है, बाबा बाबा तो है नहीं, ये बाबा बाबा करते रहते हैं हमेशा, कौन है बाबा? तो आज तक हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। इसी मेडिटेशन हॉल में ही मुझे याद है जगदीश भाई जी, हमारे लास्ट क्लास उनका था शरीर छोड़ने से पहले, अव्यक्त होने से पहले, उन्होंने लास्ट क्लास में क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा मेरे भाई और बहनों, मैं सारा जीवन लगा दिया लिखने में, भाषण करने में, बाबा को प्रत्यक्ष करने में, लेकिन नहीं कर पाया। क्योंकि हम सभी मिलकर जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। सभी को बनना पड़ेगा एक साथ। कोई एक कितना भी पुरुषार्थ कर ले उससे बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा ने कहा है जब अमेरिका में देखोगे फरिश्ता ही फरिश्ता नजर आएंगे, लंदन में देखोगे फरिश्ता ही फरिश्ता, ऑस्ट्रेलिया देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब लोगों की बुद्धि जाएगी, बाबा को पहचानेंगे। तो हमारे लिए ही सब कुछ रुका हुआ है। आप सोचिए तो सही, कोई अगर गाड़ी में ड्राइवर रेडी है, गाड़ी स्टार्ट है, सभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए ही गाड़ी रुकी हुई है, सभी के मन में क्या संकल्प चलता होगा, क्या करना चाहिए? ड्राइवर भी तैयार है, गाड़ी स्टार्ट है, सब है, लेकिन आपके लिए इंतजार हो रहा है, आप लेट कर रहे हो, कितना संकल्प चलेगा सभी का? ऐसे ही जो विश्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हमारे लिए ही। तो अंदर ऐसी अगर जब तक हमारे अंदर ये वृत्ति नहीं होगी तब तक फास्ट पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। समय पड़ा है, कई तो सोचते हैं कि संगम 100 साल ना, 2036 तक तो है ही, देखेंगे, ऐसे भी सोच के कई लोग बैठे हैं। परंतु समय जब होगा जो होगा, लेकिन अपना क्या भरोसा है? जैसे उम्र आगे बढ़ता जाएगा कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने जो हम सभी को 4 सब्जेक्ट है हमारी पढ़ाई, ये 4 सब्जेक्ट में क्या ऐसी तैयारी करें जो हम लास्ट होते हुए भी एकदम फास्ट पुरुषार्थ करके एकदम फर्स्ट हो सकते हैं। मैं जो समझा हूं दादियों को पूछकर, बड़े भाइयों को पूछकर, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करके जो मुझे समझ है मैं शेयर करता हूं आपको, आप सोचना गंभीरता से। 4 सब्जेक्ट में अगर इसमें, इस पढ़ाई में अगर टॉपर बनना चाहते हैं, आगे नंबर लेना चाहते हैं, हमारी 4 जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में कैसे हम पास विथ ऑनर्स बने, अच्छे मार्क्स लेके पास करें, हमें उसी अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए साइंस में 100 से 100 रखा है, मैथमेटिक्स में 100 से 100 रखा है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में 20% मार्क रखा है, तो पास करेगा? फेल हो जाएगा ना। तो यहां भी 4 सब्जेक्ट में हमें अच्छा मार्क लेके पास करना है, तो ही लास्ट फास्ट फर्स्ट हो सकते। तो 4 सब्जेक्ट के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सबसे पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। बाबा ने क्या कहा जानते हैं? बाबा ने कहा है मेजोरिटी बच्चे सुनने और सुनाने वाले हैं। द्वापर युग से हम सुनते सुनाते ये तो चलता रहा, सुनने सुनाने से ज्ञान का सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। बाबा ने कहा ये ज्ञान को खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद उसको मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, फिर इसका स्वरूप बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी लिखने का कोई है ही नहीं एग्जाम। प्रैक्टिकल बाबा जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल हमको दिखाना पड़ेगा। आप मुरली कितने बार पढ़ रहे हो, 8 बार 10 बार पढ़ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं। बाबा जो उसमें शिक्षा जो हमको बता रहे हैं कि ऐसा करो बच्चे, ऐसा बनो बच्चे, अगर वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो बाबा भी खुश होंगे और हमारे प्रैक्टिकल जीवन से लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने के बाद इनके जीवन में यही परिवर्तन आया। मान लीजिए हम मुरली 10 बार पढ़ रहे हैं लेकिन छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, घृणा नफरत दूसरों के प्रति है, तो कोई मानेगा कि भगवान हमको पढ़ा रहे? तो इसलिए बाबा का कहना है कि सुनना सुनाना ही तो द्वापर युग से कर रहे हो आप, इससे कुछ नहीं होगा। एकांत में बैठो, मुरली का मनन करो, चिंतन करो। एक होता है रिपीट करना, आज बाबा ने मीठे बच्चे ये बोला, प्रश्न ये था, वरदान ये था, स्लोगन ये था, हो गया, इसको रिपीट करना कहते हैं। इससे ठीक है, चलो बाबा की शिक्षाएं आपको याद रहेगी, दोहरा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन विचार सागर मंथन किसे कहा जाता है? बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में देखना, हर 15 दिन में 20 दिन में जरूर ये पॉइंट आएगा कि बच्चे विचार सागर मंथन करो, सवेरे सवेरे उठो, विचार सागर मंथन करो। बहुत कम भाई बहने विचार सागर मंथन करते हैं, और जो विचार सागर मंथन करते हैं इस पढ़ाई में वो टपर बनेंगे। जो भाई बहन रोज विचार सागर मंथन करते हैं हाथ उठे, देखिए कितना 2-4% ही। विचार सागर मंथन माना क्या वो समझना जरूरी है। हम बहुत सालों से बाबा की ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और टॉपिक के बारे में गहराई में सोचिए और लिखिए। विचार सागर मंथन करने का सही तरीका है लिखना। जब तक नहीं लिखेंगे, ऐसे बैठेंगे खाली सोचने के लिए, मन इधर उधर भटकता रहेगा, भागेगा। लिखना है। कोई एक टॉपिक ले लीजिए रोज, कोई ना कोई टॉपिक लेके आप विस्तृत रूप में उसका चिंतन कीजिए और लिखिए। बाबा की ज्ञान आधारित पॉइंट्स को लिखिए। उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि विशाल होगी। बाबा का खजाना सो अपना खजाना अनुभव होगा। अपना घोट तो नशा चढ़े तो नशा चढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, शक्ति आएगी, मायाजीत बनेंगे। मुझे याद है अव्यक्त बाबादादा से तो हम पर्सनल भी मिलते थे पहले, तो एक भाई को बाबा ने पूछा कि बच्चे जितना योग के लिए आप समय देते हो क्या ज्ञान के लिए उतना समय देते हो? तो उन्होंने कहा बाबा विनाश हो जाएगा, क्या करना है, आपको याद करना है, आप तो बोलते हो याद करो क्या करना है ज्ञान। तो बाबा ने कहा था नहीं बच्चे, योग एक कवच है, आप योगयुक्त हो तो माया आएगी टकराएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सुरक्षित रहोगे। लेकिन ज्ञान एक तीर है, आप दूर से माया को पहचान कर ज्ञान रूपी तीर से उसको भगा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए जितना ज्ञान का पलड़ा भारी उतना योग का पलड़ा, दोनों बैलेंस होना जरूरी है। तो कहने का मतलब है बाबा हमें रोज ज्ञान का विचार सागर मंथन इसलिए कह रहे हैं कि हम पहले से ही मंथन करके रखेंगे तो सेवा कर सकेंगे। कहीं भी आप कोई सवाल पूछता है, जैसे हमारे दादी जानकी को देखते थे, पूछो पूछो पूछो, आप प्रश्न पूछते ही उत्तर फटाफट फटाफट 1, 2, 3, 4, 5 सुना दी। हमारे जगदीश भाई जी रोज कहते थे मैं 2 बजे उठ के बाबा को याद करके थोड़े समय के बाद बैठ जाता था लिखने के लिए। जगदीश भाई जी लगभग 300 बुक्स लिखे हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू में। आज हमारी संस्था में ऐसा आज तक तो मैं नहीं देखा हूं जो कि सारी किताब पढ़ा होगा, हम सारा जीवन भर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो रोज अमृत वाले बैठ के कहते थे मैं लिखने के लिए बैठता था तो ऊपर से जैसे एकदम फ्लो हो रहा है, बैठ के मैं लिखता था। तो विचार सागर मंथन करने का सही तरीका है बैठना, लिखना, रोज कुछ ना कुछ लिखना, विस्तार में, गहराई में। किसी को पढ़ के उतारना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, आप खुद चिंतन करो, मनन करो, लिखो, तो ही बुद्धि विशाल होगी। बाबा का खजाना अपना खजाना होगा, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में उतरेगा। तो जब तक मनन नहीं करते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, तो स्वरूप भी नहीं बन पाएंगे। खाली सुनने रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, वो तोता जैसा ज्ञान होगा, पंडित जैसा ज्ञान होगा। तो इसलिए अगर ज्ञान का सब्जेक्ट में आगे नंबर लेना है, लास्ट फास्ट होना है, तो रोज एक टाइम निकालिए, अमृत ले बैठिए कोई ना कोई टॉपिक पर। कितने सारे टॉपिक है, अथाह टॉपिक है, जो भी मुरली का पॉइंट एक टॉपिक ले लो। जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे अभी घर चलना है, ठीक है, तो घर चलना माना क्या, इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़े, मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, घर चलने के लिए मैं तैयार हूं, इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, किसको कहेंगे एवर रेडी, बाबा क्यों कहते हैं, क्या क्यों कैसे, ये जो हमारे मन में सवाल उठता है कोई भी टॉपिक के लिए, ये सब पॉइंट्स नोट कीजिए और लिखिए। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में अगर पास होना है तो विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, तो ही जाके आगे नंबर ले सकते हैं और इस पढ़ाई में पास हो सकते हैं। और बहुत कम परसेंट, बाबा कहते मेजोरिटी खाली सुनने सुनाने वाले नहीं, जीवन में उतरेगा जब विचार सागर मंथन। योग सब्जेक्ट में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग सब्जेक्ट में एकदम आगे नंबर लेना है। कैसे लास्ट टू फास्ट हो सकते हैं, हम बाबा के बच्चे सभी योग कर रहे हैं। बाबा की पढ़ाई में देखिए, बाबा ऐसी एक मुरली नहीं होगी जिस मुरली में बाबा नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, पिता परमात्मा को याद कर। एक होता है आत्म अभिमानी स्थिति, दूसरा है देही अभिमानी अशरीरी, बाबा कहते कभी फरिश्ता, कभी अव्यक्त, कभी विदेही, कभी बीज रूप, कभी विश्वकलन, कितने सारी योग की अवस्थाएं हैं, स्थिति है। तो इसमें हमें स्पष्ट समझ होनी चाहिए ये सब चीजें क्या है। बाबा हमें योग क्यों सिखा रहे हैं? योग द्वारा हम अपने को शक्तिशाली बनाते हैं। ज्ञान द्वारा समझ आती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझ आ गया। लेकिन इसको प्रैक्टिकल जीवन में, आचरण में उतारने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए बाबा हमें योग का महत्व बताया है। लेकिन अभी इस पढ़ाई में पास होने के लिए अंत में बाबा एक ही पेपर लेंगे, एक ही पेपर आएगा, वो है अशरीरी भव। जो अशरीरी हो गया इस पढ़ाई में पास, क्योंकि बाबा ये 50, 60, 70 किलो का इस शरीर को साथ में लेके नहीं जाएंगे, हम आत्मा ही जाएंगे। तो जो अशरीरीपन का अभ्यास नहीं किया है बहुत लंबे समय से, वो अंत में फेल हो जाएगा इस पढ़ाई में। और योग में कितने पास करते हैं? हमारी पढ़ाई में टोटल 33 करोड़ देवी देवता बनेंगे, खाली 2 करोड़ ही पास होते हैं सतयुग में जाने के लिए, बाकी 31 करोड़ तो फेल स्टूडेंट है, त्रेता युग में जाएगी। तो मेजोरिटी योग का सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा योग को साधारण सब्जेक्ट नहीं समझो, इसका गहराई में जाओ, योग क्या है समझो। कल ऐसे बैठा थोड़ा रेड लाइट में, थोड़ा सा गीत बजा, सुन लिया, चला गया, इसको योग नहीं कहा जाता है। योग माना लगन में मगन, एकदम बाबा के प्रेम में एकदम गदगद हो जाओ, देहभान भूल जाए बिल्कुल। शरीर को नहीं भूल पा रहे हैं माना हमारा योग कच्चा है। जितना समय हम बैठते हैं योग में, बिल्कुल देहभान मिट जाए, एकदम हल्कापन, लाइट लाइट लाइट, बिल्कुल जैसे शरीर है नहीं, ऐसा अनुभव होता है। मुझे वो दिन याद है जब हम शुरू शुरू में आते थे, हॉस्पिटल नहीं था, ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, कुछ नहीं था, खाली पांडव भवन ही छोटा था। तो दादियां हमारी भर्ती कराती थी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, जो भी दादियां मुख्य दादियां हैं, सामने बैठ के संदले में बैठ के योग कराती, भर्ती करते थे हम 30-40-50 लोग। उन दिनों में मेरा अनुभव है, एक बार सुखधाम में 3 दिन का भर्ती था, मुझे याद है। वो 3 दिन में मैं 1 घंटा भी सोता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल मेरा शरीर इधर है नहीं, चलते समय भी ऐसा लगता था मेरा पांव जमीन में है नहीं, एक रोटी खाओ पेट भर गया जैसा लगता था। 1 घंटा सो जाओ एकदम फ्रेश लगता था। जो पावरफुल वातावरण, जो एकदम दादियों की दृष्टि होती, तो बिल्कुल एकदम पूरा करंट जैसा फ्लो रहा है, एकदम शुद्ध बुद्ध भूल गया ऐसा अनुभव होता था, घंटों बीत जाता था पता नहीं। तो हम योग तो सभी लगाते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन योग में क्या अनुभव होता है अशरीरीपन का? क्योंकि बाबा ने कहा बाप समान बनना है। बाप समान माना क्या? शिव बाबा समान अशरीरी विदेही और ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता। तो फरिश्ता स्थिति, अशरीर स्थिति, ये 2 स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। और खाली हमारा तो योग बैठा बैठा नहीं है, सवेरे शाम अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो सारा दिन कर्मयोगी रूप में फिर इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे, बनेंगे, ऐसा अनुभव होगा कर्म करते समय भी। तो बाबा हमें जो 5 स्वरूपों का ड्रिल बताए, किस लिए? क्योंकि जैसे ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में उतार के ऐसा प्रैक्टिकल दिखाना है हमको, ऐसे ही योगी जीवन, योगी तो आत्मा, योगी आत्मा, योगी तो आत्मा में अंतर है, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा में अंतर है। हमें योगी तो आत्मा बनना है, माना प्रैक्टिकल जीवन, योगी जो देखे हमारे आचरण, हमारी दृष्टि वृत्ति चाल चलन बोल व्यवहार योगयुक्त हो। ऐसे नहीं कि सवेरे शाम योगी और दिन भर क्रोधी, उसको योगी जीवन नहीं कहा जाता है। बाबा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें 5 स्वरूप का जो ड्रिल जो रोज करते हैं, भाई बहन हाथ उठे देखो, ये भी सभी नहीं कर रहे। बाबा ने 5 स्वरूप का ड्रिल क्यों कहा जानते हैं? जो लंबे समय तक आपके कम से कम 25 मुरलियां होगी अव्यक्त बाबदादा की, जिसमें बाबा ने कहा आप कितने भी सेंटर खोले हो, कितने भी भाषण किए हो, कितने भी तन मन धन लगा के सेवा किए हो, लेकिन ये 5 स्वरूप का ड्रिल नहीं किया हो, रूहानी ड्रिल नहीं किया हो, तो अंत में फेल हो जाओगे। बाबा ने कहा है, बाबा का महावाक्य है, क्योंकि अंत में एक सेकंड का ही टाइम मिलेगा और बाबा कहेंगे चलो बच्चे घर, जो अशरीरी हो पाया चल पड़ेगा, नहीं तो फिर रोते रहेंगे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, रोना पड़ेगा अंत में। इसलिए बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो जब भी जैसे कोई स्पोर्ट्समैन कोई खिलाड़ी जाता है फील्ड में, तो पहले वो पीटी करता है, ड्रिल करता है, फिजिकल ड्रिल। स्कूल को बच्चों में पीटी कराते हैं ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, वार्म अप के लिए। ऐसे ही कभी भी हम योग में बैठते हैं तो पहले 5-7 मिनट ड्रिल कीजिए। अभी अभी मैं ब्राह्मण आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर बैठा हूं, संगम युग में मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूं, उसी नशे में। फिर एक मिनट में अनुभव करें, अभी सूक्ष्म वतन में मेरा शरीर बिल्कुल एकदम हल्का लाइट का, मस्तक के चहुं और एक सुंदर प्रभामंडल है पवित्रता का, दो सुंदर पंख हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख से सुंदर एकदम मैं बिल्कुल हल्का एकदम लाइट लाइट लाइट, फरिश्तापन का अनुभव। एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, वो है फरिश्ता, मेरा तो एक सिवा दूसरा न कोई, फर्श से ऊपर। फिर एक मिनट में एकदम चले जाएं परमधाम में, वहां बिल्कुल बाबा और मैं, बाबा बिंदु मैं बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु, बस एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्पार्कलिंग स्टार एकदम चमक रहा हूं, वो स्वरूप का इमर्ज करके मैं ऐसा हूं अनुभव हो, और कोई संकल्प विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, बाबा के साथ, बाबा भी एक चमकता हुआ सूर्य समान, मैं भी उनके साथ साथ हूं। फिर एक मिनट में नीचे उतर आए, एकदम सत्वप्रधान सृष्टि सतयुग में मैं संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा हूं, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को इमर्ज कीजिए, डबल ताजधारी हूं, एक रत्न जड़ित स्वर्णिम ताज, एक सुंदर पवित्रता का ताज, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी मूरत, माथे पर विजय का तिलक, गले में वैजयंती माला, मैं विश्व का मालिक संपूर्ण निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु हूं, उसी समान में उस स्वरूप अनुभव करें। फिर मध्यकाल में बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में अपना यादगार का मूर्ति, उसी चतुर्भुज विष्णु को याद कीजिए, कि मेरा ऐसा जड़ मूर्ति भी होगा जो अनेक भगवत आत्माएं सिर्फ दर्शन से तृप्त हो जाएंगे, यही मेरा पूज्य स्वरूप है। तो ये स्वरूप को बार बार रिपीट करके दोहराना, साकारी ब्राह्मण आत्मा, आकारी फरिश्ता स्वरूप, निराकारी ज्योति स्वरूप, निर्विकारी देवात्मा स्वरूप। जो हमारा पूज्य स्वरूप होगा वो पूजनीय स्वरूप भी होगा। सत्युग में जो जैसा देवात्मा होंगे उसी का ही मूर्ति बना के करेंगे ना, तो दोनों को एक कर सकते हो। जैसे पीटी करते हैं तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार करते हैं, तो ऐसे ही साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी, दोहराइए दोहराइए, चिंतन कीजिए स्वरूप बन जाए, चिंतन कीजिए स्वरूप बन, ऐसा। ये ड्रिल बहुत बार बाबा कहते हैं हर घंटे में करो, एक मिनट के लिए करो, सवेरे शाम जब भी योग में बैठते हैं इसको करना जरूरी है। जो ये ड्रिल का अभ्यासी होगा वही योग के सब्जेक्ट में अंत में भी पास हो जाएगा, नहीं तो देखना। और बाबा जो अनेक स्वरूप बताए हैं, बाबा ने निरंतर योगी, अंत में तुम्हारी स्थिति निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी होना चाहिए, बाबा ने कहा है। निरंतर योगी कैसे बनेंगे, इसके लिए बाबा ने विधि बताया है। निरंतर योगी के लिए बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न सोमान का अभ्यास करो, सोमान का अभ्यास करने से भी वो भी योग है, उठते ही अनुभव करो मैं बाबा का अधिकारी बच्चा हूं, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा ही दिखाई दे, मैं बाबा का अधिकारी बच्चा हूं। फिर जब हम योग लगाते हैं, बाबा ने कहा है समझो मैं रूहानी यात्री हूं, परमधाम यात्रा में हूं, रूहानी यात्री हूं, जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं सोचें मैं नंबर वन गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान स्वयं मेरे लिए ही आए हैं, मुझे पढ़ाने आए हैं, इतने नशा खुशी सम्मान में रह के सुनो, गॉडली स्टूडेंट हूं। सारा दिन सेवा करते हो तो बाबा कहते हैं ये सम्मान रखो, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, स्वयं भगवान आए हैं विश्व को बदलने में, बाबा की मददगार हूं। जब माया आती है सोचो मैं रूहानी योद्धा हूं, तो बाबा कहते भिन्न भिन्न सोमान को इमर्ज करो, तो सोमान में रहना भी योग है। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा सोमान इमर्ज करो। अगर वो नहीं कर पाते हो, बाबा ने कहा है कि बच्चे चार शब्द याद करो, गीत, मीत, प्रीत, रीत, ये चार सब्जेक्ट, ये चार बातों को याद करोगे तो तभी निरंतर योगी बन जाओगे। गीत, बाबा के कितने सुंदर गीत बने हुए हैं। मैं शुरू शुरू में, मुझे याद है, मैं एकदम नया नया था, मुझे जगदीश भाई जी ने पूछा कि आपका योग लगता है, तो मैंने कहा भाई साहब मेरे बुद्धि तो बंदर जैसा, इधर छलांग लगाता है उधर छलांग लगाता है, एकाग्र तो हो नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा आपके पास टेप रिकॉर्डर है, उन दिनों में टेप रिकॉर्डर का जमाना था, मैं बोला कि नहीं है, तो एक टेप रिकॉर्डर खरीदो और बाबा का गीत सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, देखना बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और मैं वही क्या सच बता रहा हूं। तो आप देखना दुनिया में भी जो, जहां पहले जमाने में तो संगीत संध्या होती थी, आजकल तो ये सब मोबाइल ये सब होने के बाद ये सब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया, नहीं तो पहले जमाने में लोगों को काम धंधा तो होता नहीं था, शाम को संगीत संध्या होती थी तो जाके लोग बैठते थे। मेरे पिताजी के साथ मैं बहुत बार जाके बैठा हूँ, वहां जाके संगीत संध्या होगी तो वहां क्लासिकल सिंगर आते थे, एक बीना है, कुछ थोड़ा डुबितावल है, कुछ है ट्यूं 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 ट्यूं, आ आ आ, लोग बैठ के आराम से सुनते रहेंगे घंटों तक, आजकल तो और कोई उठ के भाग जाएगा। लेकिन मैं देखा हूं कि संगीत संध्या होती थी तो लोग एकदम लगन से रात भर भी सुनते थे, बैठते थे, उनको थकान नहीं होता था। तो बाबा के गीत सुनोगे तो नशा चढ़ेगा, प्यार के गीत सुनो, उमंग उत्साह के गीत सुनो। माताएं तो घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ कर रहे हो, गीत बजता रहे, देखना आपको अरे उड़ते रहोगे। ये तो लौकिक दुनिया में भी इसको अपनाते हैं, इस विधि को। मैं आपको बताऊं, मैं बॉम्बे में जब एनेस्थेसिया का पोस्टुलेशन कर रहा था, सायन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में, वहां जो ऑपरेशन थिएटर होगा इतना बड़ा होगा, इतना बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर, चार पांच टेबल होगा ऑपरेशन थिएटर में, और वहां ऑपरेशन में तो खून खराबा होता है, कितने खून निकलता है आप देखो, कितना टेंशन का माहौल होता है। लेकिन मैं देखा कोई किसी को टेंशन नहीं, ना नर्स को टेंशन, ना डॉक्टर को टेंशन, ना सर्जन को, किसी को टेंशन नहीं। कैसे जानते? कि वो ऑपरेशन थिएटर में कोने में एक डीजे रखे थे और सवेरे आके एकदम खूब जोर से एकदम म्यूजिक बजता था, एकदम म्यूजिक बजता था, बढ़िया बढ़िया संगीत एकदम। तो वो नर्स भी वो नाइफ और सब लेके आ रही है ट्रे में और डांस करते करते आ रही है, और सर्जन भी आके सर्जरी करने आ रहा है, वो भी डांस करते करते आ रहा है, सभी एकदम, इतना लाइट मूड की बात मत पूछो। तो बाबा हमें यही विधि बताते हैं, बच्चे तुम कुछ भी करो, बाबा के गीत सुनते रहो सुनते रहो, यही योग है। एकदम रोमांच हो जाएगा, कभी बाबा के प्यार के गीत सुन के गदगद हो जाओ, खो जाओ बिल्कुल बाबा के प्यार में, कभी उमंग उत्साह का गीत सुना मजा आ जाएगा, एकदम नशा चढ़ जाएगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, वही योग है। तो गीत, दूसरा है मीत। दो फ्रेंड बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो दो फ्रेंड जब मिलते हैं, देखना गप करते 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 रात कब सवेरा हो जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा, सुध-बुध नहीं चलेगा, कितना टाइम हो गया क्या हो गया। ऐसे ही बाबा को अगर 5000 साल के बाद मन का मीत मिला है तो बाबा से अच्छी तरह से रूहान करो, बाबा को अपना मीत समझते हो तो इसमें भी आपको देवान सुध-बुध भूल जाएगा। और प्रीत, दुनिया में भी किसी से किसी का प्यार हो जाता है तो दुनियादारी भूल जाते हैं, सब लोकलाज भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो यहां भी हमारे चंद्रमणि दादी कहती थी, प्यार किया तो डरना क्या। तो यहां बाबा के साथ प्रेम अगर हो गया तो सुध-बुध भूल जाएगा सारा, दुनिया में कौन क्या कहता है कुछ 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 सुध-बुध नहीं रहेगा, बाबा के साथ एकदम योगयुक्त हो जाए। और रीत, जो ब्राह्मण कुल के रीत रसम बाबा ने जो सिखाया, मर्यादा नियम, इसको भी पालन करना जरूरी है, तो ही जाके आप योगयुक्त हो पाएंगे। तो बाबा भिन्न भिन्न विधि बताते हैं हमको कैसे निरंतर योगी बनना है, लेकिन सार है, मैं आपको बताऊंगा, अशरीरी बनना, फरिश्ता बनना, और इसके लिए विधि है रूहानी ड्रिल करना। जितना जो रूहानी ड्रिल का अभ्यासी होगा अंत में वो पास होगा, नहीं तो बाबा अंत में कुछ नहीं पूछेंगे, कितना सेंटर खोले हो, कितने जिज्ञासु आपके पास है, कितने तन मन धन लगाए, कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अंत में एक सेकेंड में अशरीरी हो गया पास। तो बाबा ने सारे दिन में हमारी तीन अवस्थाएं होती है, एक जब बुद्धि लगा के काम करना पड़ता है, उदाहरण के रूप में आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो, अकाउंट्स का काम कर रहे हो, जहां बुद्धि लगानी पड़ती है, उस समय बाबा 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 करेंगे तो गड़बड़ करेंगे। इसलिए बाबा ने उस समय योगयुक्त बनने के लिए हमको विधि बताए हैं, पहले बाबा को आह्वान करो, बाबा मैं ये सेवा करने जा रहा हूं, आओ साथ में करेंगे ना, बाबा आप मेरे साथ रहो, फिर पूरा टोटल एकाग्र होकर काम को करो, मन बुद्धि उधर लगाओ, बीच में जब भी फुर्सत मिलता है थैंक यू बाबा आप साथ हो ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, और जब सेवा पूरी हो जाती है फिर बाबा को दिल से थैंक्स कहना, बाबा साथ थे ना, सब ठीक हो गया, तो वो पूरा समय योगयुक्त गिना जाएगा। कभी कभी हम जो सेवा करते हैं उसमें बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है, उदाहरण के रूप में आप कपड़े धो रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, और कुछ कर रहे हो, खाना सब्जी काट रहे हो, उसमें बुद्धि लगानी नहीं पड़ती इतनी। तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा है कि ऊंचे ऊंचे सोमान में रहो, मैं फरिश्ता हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं अंगद हूं, मैं महावीर हूं। तो आप कितना भी मेहनत का काम हो उस समय जोश आएगा बिल्कुल एकदम, तो उस समय भी योगयुक्त ऊंचे ऊंचे सोमान में रहो बाबा ने कहा। अभी अकेले हैं, बहुत सारी सेवा बाकी है, कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा, उस समय बाबा को आह्वान करो, आओ बाबा, ऐसे ही कहते बाबा मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, आओ अभी साथी बनकर करो, चलो आप वो काम करो, मैं ये काम करता हूं, बाबा को अधिकार से बुलाओ, साथ में करो, तो वो भी योगयुक्त हो जाएगा। और जब कुछ काम नहीं है उस समय बिंदु बन जाओ, बाबा बिंदु मैं बिंदु ड्रामा बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु ड्रामा बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अनुभव सुनाता हूं। शुरू शुरू में मैं जब इधर आया, दादी को पूछा, हमारी प्रकाशमणि दादी उन दिनों में थे, मैं बोला दादी बाबा जो कहते हैं हम ऊपर ऊपर तो सफेद हो गए, बेज लगा दिए सफेद हो गए, लेकिन अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए कैसे होगा, इतना कम समय में कैसे होगा। बाबा ने कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी, दादी ने कहा तपस्या करनी पड़ेगी। बाबा ने हमको शुरू में तपस्या कराए, 14 साल तक तपस्या कराए, फिर बाबा ने हमको सेवा के लिए भेजा। तपस्या कर, ब्रह्मा बाबा खुद 2 बजे उठ के रोज तपस्या करते थे। तो मैं उन दिनों में जल्दी आता था हॉस्पिटल से, अभी भी आता हूं जल्दी, तो आके मैं देखता था बहुत ऐसे बाबा के बच्चे जो कि कोई जानते नहीं उनको, कहीं दूर दूर से आते थे, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, लेकिन बाबा के कमरे में बैठे हैं एकदम एकाग्र होकर बिल्कुल स्थिरियम, बिल्कुल हलचल नहीं, घंटों तक मैं देखता था। एक बुजुर्ग भाई थे, 70+ एज होगा, एकदम बाबा के सामने बैठ के मैं देखता था घंटों तक, बिल्कुल हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, पूरा एकाग्र होकर ऐसे बैठे, मुझे रहा नहीं गया। एक दिन मैं उनको पूछा, भाई जी आप कैसे योग लगाते हो बताओ तो सही, मैं यंग था, मैं पांव चेंज कर रहा हूं, वो तो पूरा बिल्कुल एकदम बैठे स्थिर हो गए। क्योंकि बाबा ने कहा जब आप पूरा देही अभिमानी बन जाओगे तब आप बिल्कुल स्थिरियम हो जाओगे, ना तन में कोई हलचल ना मन में कोई हलचल, बिल्कुल स्थिरियम हो जाओगे, आंखें भी अपलक हो जाएगा। आप योग में बैठे हो बार बार ऐसा कर रहे हो, वो एकाग्रता की निशानी नहीं है, आंखें भी एकदम अपलक हो जाएगा, स्थिरियम हो जाएगा। तो मैं देखता था एकदम स्थिर होकर बैठे, मैं उनको पूछा एक दिन, तो उन्होंने कहा बोला कि देखो भाई जी मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बाबा के सामने बैठता हूं, बाबा को कहता हूं बाबा आप भी बिंदु मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु मैं बिंदु, बिंदु हो जाता हूं। तो हम जब योग में बैठते हैं कितना समय शरीर को भूल पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशरीरी अनुभव करो, फिर फरिश्ता अनुभव करो, कभी एकदम लाइट के शरीर में, बहुत अच्छा। बाबा ने हमें युक्ति बताया, देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत गुह्य बात है। बाबा ने कहा है अब बच्चे जब परमधाम में जाते हो उस समय बीज रूप होकर बैठो, बीज रूप माना क्या, और कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई धंधाधुरी नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं, आत्मा अपने डर्मांड स्टेज में बीज रूप में उधर होती है। तो बाबा बिंदु, बाबा एक ज्योति बिंदु है, मैं भी ऐसा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, डिवाइन लाइट हूं, बाबा के साथ बैठो, उस समय बाबा से शक्ति का अनुभव करो। हम जाते हैं ऊपर बाबा से चार्ज होने के लिए, वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, बस बाबा को देखते रहो, एकदम बाबा से एकदम शक्तिशाली किरणें आ रही है, एकदम मुझे आत्मा में बिल्कुल एकदम सारी शक्तियों की किरणों से मैं एकदम चार्ज होता जा रहा हूं, एकदम बाबा के साथ, एकदम बाबा के नजदीक जाते 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 एकदम बाबा के सान्निध्य में समीप में एकदम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, कभी बाबा कहते शिव शक्ति हो जाओ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ एकदम, जैसे बाबा मेरा एकदम सूर्य समान लाइट माइट, मैं भी ऐसे बाबा के साथ एकदम चार्ज हो जाओ। कितने समय बैठे हो उसको घड़ी क्यों देखना है हमको? बाबा हमारी जानकी दादी कहती थी ये हाथकड़ी है, घड़ी नहीं हाथकड़ी है, मैं नहीं पहनता हूं, नहीं पहनती हूं कभी, तो घड़ी क्यों देखना है? उसमें टाइम का समय का कंसेप्ट नहीं। कितने समय हम ऐसे बाबा के साथ बिंदु होकर बैठ पाते हैं, उससे चार्ज हो जाएंगे, एकदम शक्तिशाली स्थिति होगी। फिर बाबा कहते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते भी कोई बात नहीं, थोड़े समय में भी बहुत एकदम शक्ति की अनुभूति होगी। फिर हम नीचे उतर आए सूक्ष्म वतन में, वहां फरिश्ता का अनुभव करें और बाबा के साथ विश्व परिक्रमा करें, मनसा सेवा करें, सबको सकाश दें। दादी जन की क्या कहती जानते हो? एक बार मैं हॉस्पिटल में दादी एडमिट थी, दादी को मैं पूछा दादी, उस समय 4 बजे गया गुड मॉर्निंग करने के लिए, तो दादी सोफा में बैठी है और योग कर रही है। मैं बोले दादी आपका तबीयत, हूं मैं बाबा की सजनी हूं, खटिया में बैठ के योग करूंगी? बीमार होके भी सोफा में बैठ के। तो मैं एक दिन पूछा दादी को, दादी आप अमृतुल्य कैसे योग करते हो? तो दादी ने कहा मैं हनुमान बन जाती हूं, एक कंधे में बाबा को बैठा देती हूँ, एक कंधे में मम्मा को बैठा देती हूँ, यहाँ शिव बाबा सर्च लाइट हो गए एकदम लाइट, यहाँ शिव बाबा को बैठा देती हूँ और सारा उड़ती हूँ पूरा एकदम पूरा अंतरिक्ष में, सारे देश को सभी को सकाश देते हूँ ऊपर से, बाबा से लाइट आ रही है, मम्मा से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, मैं भी लाइट दे रहा हूँ, मैं वरदानी हाथ से लाइट दे रहा हूँ, दादी ऐसे कहती थी। तो सवेरे सवेरे फरिश्ता बनकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर कभी पुष्पक में बैठ जाओ, कभी बाबा के साथ उड़ो ऊपर से, सभी आत्माओं को इमर्ज करो। भले हम सब देश नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, विश्व ग्लोब को इमर्ज करो, बाबा सभी आत्माएं कैसे दुखी हो गए, हे आत्माएं उठो उठो जागो, देखो हमारे अनादि पिता शिव बाबा आए हैं, देखो ये हमारे ब्रह्मा बाबा है, देखो विश्व परिवर्तन अभी बहुत कम समय रह गया, पहचानो अपने दोनों पिता को, ले लो वर्षा, उठो जागो हे आत्मा, ऊपर से संदेश दो सकाश दो। तो बाबा कहते हैं जो राजा बच्चे होंगे, बाबा ने कहा 4 बजे से 4:45 तक ये मनसा सेवा विश्व सेवा के लिए टाइम है, जो राजा बच्चे होंगे वो पहले से उठ के अपने को चार्ज करके इस समय मनसा सेवा करेंगे, और बाकी जो राजा नहीं बनेंगे वो तो 4 बजे उठेंगे, तैयार होके आते होते बैठ के मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं करते करते सफेद लाइट हो गया। तो अगर इस पढ़ाई में टपर बनना है तो थोड़ा सा जल्दी उठो, मैं नहीं कहूंगा बहुत जल्दी उठना है, 3:30 बजे का जो नियम है थोड़ा सा समय, अगर 3:30 बजे पक्का नियम, जो बाबा के बच्चे एक दिन भी अमृतला मिस नहीं करते हाथ उठाइए, देखा 50% भी नहीं। यहां से इस बारी प्रण करके जाइए, क्योंकि अमृत वेला बाबा का वरदानी वेला है, बाबा कहते बच्चे इस समय बाबा आपको मनिचित सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, बाबा उस समय खास समय रखे हैं हमें वरदान देकर सभी पापों से मुक्त करने के लिए, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अमृत वेला मिस नहीं करो। लास्ट सो फास्ट जाना है तो कभी भी मम्मा बाबा सारे जीवन काल में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किए, एक दिन भी मिस नहीं, तो अमृत वेला मिस करेंगे तो कैसे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं? कभी भी अमृत वेला नुमा शाम योग मिस ना हो, और उठ के खाली उठ के नेमिनाथ होके बैठ गए ऐसे बैठ गए उसको नहीं, कितना शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है वो कैसे होगा जानते हैं? बाबा के महावाक्य है, मैं आपको बता रहा हूं, साकार बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं वो बच्चे राजा बनेंगे, ये बाबा के महावाक्य है। नहीं तो बताऊं, नहीं तो झाड़ू लगाएंगे ये बाबा का महावाक्य है, साकार महावाक्य है। जो भाई बहन सवेरे अमृत ले उठ के बाबा को याद करते हैं हाथ उठाओ, नहा के नहा दो के फ्रेश होके, बहुत अच्छी बधाई हो। जो नहीं नहाते हैं आज से प्रमिस करिए, क्योंकि हम रात को सोते हैं तो जो नींद का वाइब्रेशन है ना वो जाता नहीं, फिर सुस्ती करते रहते हैं। सवेरे उठा एकदम नहा लिया फ्रेश होके, एकदम अच्छे कपड़े पहने, फिर एकदम लगन में मगन होके खुशी से तन्मय होके, अरे हम जड़ मूर्तियों का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, नहा धोके सज धज करके जाते हैं, कोई नाइट ड्रेस पहन के जाता है क्या मंदिर में? और यहां स्वयं भगवान से मिल रहे हैं, बाबा से मिल रहे हैं, और बिना नहाए धोए यहां बाल ऐसा हफ्ता, यहां लार ऐसा लगा हुआ बैठ के बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा दृष्टि देंगे? सोचो तो सही। तो योग एक दिन भी अमृतला मिस ना हो, जितना समय हो सके अशरीरपन का अनुभव करो, बीज रूप स्थिति अभ्यास करो, विश्व कल्याणकारी स्टेज में रह के अंतरिक्ष से सेवा करो, मनसा सेवा, और 500 रुपये का ड्रिल तो ही लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते। धारणा सब्जेक्ट में कैसे, और 5 मिनट लूंगा, धारणा सब्जेक्ट में पास होना है तो देखिए बाबा ने कहा है, बाबा के महावाक्य सुनाता हूं। अगर जो आत्मा के कितने प्रकार के गुण है, 2 प्रकार के गुण है, अनादिगुण आदिगुण। अनादिगुण 7 है और अनादिगुण 7 गुण को अगर जीवन में पूरा 100% जीवन में धारण करेंगे तो सत्वगुणी अवस्था होगी। सत्योगुण हम सभी की सत्वगुणी स्थिति होगी। तो हम धारणा सब्जेक्ट में सत्वगुणी, ये सब गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो 7 जो गुण है खाली हम ऐसे सुना देते हैं, लेकिन इसका स्वरूप बने हैं। दादी कहती थी, बाबा हमको कहते थे, बच्ची जाओ 1 घंटा उसमें बैठो, वहां बैठ के अनुभव करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। एक एक गुण को बाबा एक एक दिन एक एक हफ्ता के लिए भी देते थे होमवर्क, ऐसा बनो प्रैक्टिकली। तो हम जो 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन है, ये 7 गुण को अभ्यास करें। सोमवार को मैं ज्ञान स्वरूपात्मा, बाबा सोमरस पिलाते ना, मैं ज्ञान स्वरूपात्मा अभ्यास करिए, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तो आत्मा का चिंतन कीजिए, विचार सागर मंथन। ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण क्या होता है, बाबा बहुत सारी मुरली में बताते हैं, मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है। मंगलवार को चतुर्भुज विष्णु मंगलम पवित्र स्वरूपात्मा, बुधवार को सुख स्वरूपात्मा, फिर गुरुवार को शांत स्वरूप, सदगुरु मिला जीवन में शांति आ गई, शांत स्वरूपात्मा, शुक्रवार को प्रेम स्वरूपात्मा, शनिवार को ग्रहचारी मिट गई सब, आनंद स्वरूप, और संडे को सूर्य समान शक्ति स्वरूप। तो ज्ञान पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, 7 दिन को 7 गुण का अभ्यास करें, अभ्यास करें, फिर बनेंगे ऐसा। जगदीश भाई कहते थे हमको पूरा बाबा 7-7 दिन 1 गुण का स्वरूप बनने के लिए अभ्यास कराते थे, तो ही जाके 7ों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो विकार है 5 नहीं है, 7 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है ही, लेकिन आलस्य और भय, ये दोनों भी बहुत जबरदस्त विकार है, ये इस पर भी विजय प्राप्त करना है। तो 7ों गुणों से 7ों विकारों को खत्म कर सकते हैं। और बाबा ने कहा है जो देवताई की गुण है, ये सारे गुणों को भी जीवन में धारण करना है। एक भी गुण कम हो गया तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे, सत्युग का शुरू में नहीं आ सकते हो, बाबा ने कहा। तो जितने दैवी गुण, हाँ हमारे हिस्ट्री हॉल के पास सारे दैवी गुण का लिस्ट है, 36 दैवी गुण है, वो सारे गुण को जीवन में धारण करना है। वो खाली ऐसे डिस्प्ले नहीं किया गया है, ये पढ़ाई बहुत गुह्या है। ऐसे ऐसे खाली सुपरफिशियली पढ़ने से सभी लक्ष्मीनारायण बन जाते तो फिर सभी विश्व महाराजन बन जाए। इसको जीवन में प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा ऐसा। तो एक एक गुण को जीवन में धारण करना पड़ेगा, उसका गहराई में चिंतन करना पड़ेगा, स्वरूप बनना पड़ेगा। तो इसलिए मुख्य है हमारी धारणा। सत्युग में हम बाबा हमें इतने पढ़ा रहे हैं, इतने सब योग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि हम देवता जैसा बने। देवताओं की जो महिमा हम सुनाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, 8 महिमा है, ये सब प्रैक्टिकली बनना है। हमें पुरुषार्थ करना 3 के लिए, क्या क्या, सर्वगुण संपन्न कैसे बने, सर्वशक्ति संपन्न कैसे बने, क्योंकि एक भी शक्ति कम होगी ना फेल हो जाएगी पढ़े में। देवताएं विश्व का मालिक बनेंगे तो शक्ति संपन्न होंगे ना, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, और ईश्वरीय मर्यादाएं क्या क्या है उसको जीवन में उतारना, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा ईश्वरीय मर्यादा क्या है, उसका चिंतन कीजिए, गहराई में जीवन में उतारिए, और इसका प्रारब्ध क्या मिलेगा, हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे और अहिंसा परमो धर्म हो जाएगा हमारा, डबल अहिंसक बन जाएंगे। इसका प्रारब्ध है 16 कला संपूर्ण और अहिंसा परमो धर्म, ये हो जाएगा। और इसकी स्थिति क्या बनेगी, इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवता है। तो 3 के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सारे गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, सारी शक्तियों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, और सारी ईश्वरीय मर्यादा क्या है, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। अभी धारणा का क्लास कोई करा नहीं रहे, पहले हमारे दादियां सब धारणा का क्लास करा देते। हम रोज मुरली सुन लेते हैं, थोड़ा योग लगा देते हैं, थोड़ी सेवा कर ले, हो गया। धारणा का सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, लेकिन मुख्य तो धारणा है। बाबा हमें देवता जैसा अभी बनना है, वहां तो सत्ययुग में खाली ड्रेस चेंज होगा, अभी नहीं बने तो उधर भी नहीं मिलेगा, पद कम हो जाएगा। इसलिए धारणा का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें 7 गुण कम से कम जीवन में धारण करें तो सत्व प्रधान स्थिति होगी। उसका गहराई में जाके चिंतन करके स्वरूप बनना है। और सेवा का सब्जेक्ट में लास्ट सुफास्ट होना है, तो सेवा अभी अंत में मनसा सेवा का ही रोल रहेगा। किसको सुनाएंगे? पांचों तत्वों को क्या ज्ञान सुना कि पावन बनाएंगे? बाबा कहते प्रकृति को भी आपको पावन बनाना है, तो इसलिए मनसा सेवा। ऐसे तो सर्व प्रकार का ऑलराउंडर सेवाधारी बनना पड़ेगा। तन से तन मन धन जन कहा जाता है, चारों प्रकार की सेवा करनी है। इसी प्रकार बाबा ने कहा स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, मनसा सेवा, सब प्रकार की सेवा करनी है। खाली एक प्रकार की सेवा करने से नहीं चलेगा, सभी प्रकार की, लेकिन मुख्य है मनसा सेवा। हम मन में सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले सभी आत्माओं के प्रति सुभावना रखिए, बाबा ये दुनिया कैसे हो गई है, सबका भला हो, सबका अच्छा। सवेरे सवेरे अगर सबके लिए शुभ चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा दिन भी स्थिति ठीक रहेगी। तो सेवा में नंबर आगे लेना है तो मैं आपको एक बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं, जो हमारी दीदियां भी नहीं बताएंगे आपको, कोई नहीं बताएंगे, आप करेंगे तो बताऊंगा। सभी नहीं बोल रहे, हाथ उठाइए। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन हमारी दीदियां नहीं बताएंगे, जानते हो क्यों? आपको नहीं बताएंगे वो, क्योंकि हमारी दीदियां ना सारे एक एक शेयर होल्डर हैं। अगर वो आपको कोई सेवा कहते हैं आप करते हो तो आपका 50% पुण्य उनके खाते में जमा हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको सेवा में 100% मार्क लेना है तो कहलाना ना पड़े, आपको कोई कहे और करेंगे तो आपका 50% जो कहता है उसके पास जमा हो जाता है। इसलिए आप पूछ के सेवा लेनी है, दीदी मेरे लिए कोई योग्य सेवा है, मेरे योग्य कोई सेवा है, आप पूछ के लो। अगर आप पूछते हो तो अगर दीदी कहती है कि हाँ यहाँ ये सेवा करो, आप करते हो ना, आपका 100% मार्क जमा हो जाता है, 100%। तो इसलिए आपको कहलाना ना पड़े। कहने के बाद भी कई लोग बहाना करते हैं तो उनका क्या जमा होगा सेवा में, सोचो। तो अभी बाबा के तो देखो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, क्या होगा तो देख रहे हो, अंत में सब करोड़पति रोडपति बन जाएगी, देख लेना। इसलिए जो करना है सफल करो तो सफलता मिलेगी। जितना और व्यर्थ बातों में जाना नहीं है, एकदम समेटना है, अभी सब बातों से समेटना है, तैयार होकर रहना है। बाबा कहे चल पड़ो, चल पड़े, ऐसे बनना है। और अगर सचमुच 2500 साल क्या सारा कल्प अगर माला माल बनना चाहते हो ना, बाबा भावना देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं। हमारी कोई कितना करोड़ देता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी भावना क्या है, हमारी सेवा की भावना कभी कम ना हो। इसलिए क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ चाहे 1 रुपया भी हो बाबा के यज्ञ में डालना है। तो उसमें क्या होगा, अपने बच्चों से भी कराना है, देखना फिर क्या होगा, आपके बाबा कैसे आपको सारा कल्प माला माल रखेंगे। कितना अमाउंट इंपोर्टेंट नहीं है, हमारी भावना बाबा देखते हैं। तो तन से भी सेवा करो, मन से भी करो, धन से भी करो, और जन अपने मित्र संबंधी सबको लास्ट समय संदेश दो, देखो भाई उठो जागो, नहीं तो अंत में नहीं कहना। तो चारों सब्जेक्ट में ये थोड़ी थोड़ी टिप्स जो बताया, इसको अगर हम अपनाएं तो मेरा विश्वास है हम लास्ट सुफास्ट होके भी दिखाएंगे। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट ले लिया, आई एम सॉरी, 11:30 बजे पूरा करना था। ओम शांति। मेरी तो सुभावना है हम लास्ट समय है मेरे भाई और बहनों, कहीं भी नहीं, कहीं बुद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो एक सिवाव दूसरा न कोई। अभी बहुत सारे पार्टी वाले आते हैं ना, पूछते हैं कभी कभी, एक बार बस में बैठ के कहते हैं भाई जी एक पॉइंट सुनाओ। मैं सीधा कहता हूँ सामने देखो और कहीं नहीं देखना है। इधर उधर अभी देखोगे, पीछे देखोगे तो गिर पड़ोगे। मेरा तो एक सिवाव दूसरा न कोई, बाबा क्या कहते हैं, देखो चल पड़ो, अभी किसी को देखने का समय ही नहीं है, गिर पड़ेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।
है।